पृष्ठ संख्या 44, आत्म प्रक्षेपण। राम की शक्ति पूजा के विषय में यह एक प्रचलित धारणा है कि इस कविता में निराला ने राम के माध्यम से किसी सीमा तक अपने व्यक्तित्व का प्रक्षेपण किया है। यह बात इसलिए और भी चर्चा के योग्य बन गई है कि इस रचना से पहले किसी कवि ने राम जैसे देव पुरुष को आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाया था। निराला के बाद ऐसा कई रचनाकारों ने किया, बल्कि कई बार उन्हें परंपरा से प्रतिष्ठित आस्था और सम्मान के पद से विच्युत करने का भी प्रयास किया गया। तो क्या निराला आधुनिक कविता में राम के चारित्रिक क्षरण के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है। हिंदी में तुलसी के रामचरितमानस को राम कथा का लोक परिचायक तथा आदरास्पद ग्रंथ माना जाता है, जो राम को विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करता है। बल्कि कहना अधिक समीचीन होगा कि तुलसी उन्हें त्रिदेव वर्ग से ऊपर परब्रह्म के ही रूप में देखते रहे हैं। कई स्थलों पर उन्होंने यह बात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कही है कि उनके राम विधिहर शंभु को नचाने वाले हैं, या उनमें करोड़ों विष्णुओं के समतुल्य सृष्टि पालन की तथा करोड़ों रुद्रों के समान उनके संहार की क्षमता है। तुलसी राम के इस परम देवत्व को कभी तिरोहित नहीं होने देते। जहाँ राम के जीवन में हताशा का अवसर, जैसे लक्ष्मण का शक्ति बाण लगने से मूर्छित होना और राम का विलाप करना आता है, तुलसी कथा के बीच स्वयं उपस्थित होकर पाठक को आश्वस्त करने लगते हैं कि यह सब राम की लोक लीला है, उनका लोक अभिनय है। विजय तो अंततः राम की होनी ही है। तुलसी मर्यादावादी हैं और राम के प्रति उनकी भक्ति दास्य भाव की है, अतः वह आदि से अंत तक हनुमान की ही तरह अपने इस भाव का निर्वाह करते हैं। आधुनिक युग में मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत में राम के चरित्र को थोड़ा नयापन देने का प्रयास अवश्य किया, किंतु समग्रता उनकी दृष्टि उर्मिला पर केंद्रित होने के कारण वह इस दिशा में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं कर सके। उनके राम इसी संदर्भ में धरती के प्राणी प्रतीत होते हैं कि उनके स्वकथन के अनुसार वह यहाँ स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आए थे, अपितु इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। उनके धरती पर आगमन स्वर्ग बनाने आया का अर्थ ही है उनका अवतार पुरुष होना। निराला पहले कवि हैं जो राम पृष्ठ संख्या 45 को धरती के मनुष्य का रूप देने की सार्थक चेष्टा करते हैं। राम को वह पौराणिक तथा अति प्राकृत संदर्भों से तो एकदम मुक्त नहीं कर सके, और ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। जो ऐसा करेगा उपहास और उपेक्षा का पात्र बनेगा। मिसालों की कमी नहीं है, किंतु उन्होंने यह साहस अवश्य दिखाया कि वह राम को अपना माध्यम किसी प्रसंग में बना सकें, जो प्रकांतर में राम की मनोचित परिकल्पना या अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला बना, और आगे चलकर राम के व्यक्तित्व को लेकर एकाधिक ऐसी रचनाएं सामने आई जिन्होंने जनमानस को प्रश्न आकुल किया। यह साहस तुलसी में होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह राम को अपना स्वामी मानते थे। सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरय उर्गारी, और सेवक कभी सेव्य की समकक्षता का साहस नहीं कर सकता। करेगा तो आचरण के पुराने मानदंडों के अनुसार पाप का भागी बनेगा। मैथिलीशरण गुप्त ने भी समग्रतः राम के संबंध में तुलसी का ही अनुसरण किया है। वह भी परंपरागत ढंग से राम भक्त हैं। धनुर्बाण या बेड़ लो श्याम रूप के संग, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग, द्वापर। निराला भी राम भक्त थे, जिसका साक्ष्य उनके परवर्ती प्रगीत आराधना देते हैं, किंतु ठीक उसी अर्थ में नहीं जिस अर्थ में तुलसी या मैथिलीशरण गुप्त थे। निराला एक लंबे समय तक बंगाल में रहे थे। वहाँ की दुर्गा पूजा का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। राम की शक्ति पूजा में ही वर्चस्व शक्ति का ही है। राम एक तेजस्वी किंतु मानववर्गीय चरित्र के रूप में सामने आते हैं, जिन्हें शक्ति के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। यदि वह परात्पर ब्रह्म होते तो वह हठ योगिक साधना पूर्वक पूजा अनुष्ठान क्यों करते? शिव की पूजा उन्होंने सेतुबंध के पहले मानस में अवश्य की है, किंतु वहाँ तो वह लोकलीला करने वाले अवतारी पुरुष हैं, और इसी अर्थ में मानस में शिव के द्वारा राम के प्रति कही गई श्रद्धा व्यंजक वक्तियों का भी औचित्य सिद्ध होता है। अस्तु, निराला राम को अपने आत्मधिक्कार का माध्यम बनाते हैं। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। आत्म प्रक्षेपण यही समाप्त नहीं होता, जिस आत्मबल के सहारे निराला ने इस रचना के लिखने तक अनवरत संघर्ष किया था, उसका साक्ष्य भी यहीं पर है। वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया, वरण प्राप्त कर जाए। इस उद्धरण में विनय शब्द का प्रयोग निराला के कवि व्यक्तित्व और क्रांतिधर्मी चरित्र का एक साथ परिचय देने वाला है। यहाँ उसका अर्थ विनम्रता नहीं, कायरता है। राम के मानवीय व्यक्तित्व को रेखांकित करने वाले और भी प्रसंग राम की शक्ति पूजा में हैं। मसलन, दिन भर के युद्ध के बाद उनके अव्यवस्थित तन मन की दशा, विभीषण के उत्तेजक प्रबोधन के बाद भी उनका अप्रभावित रहना, उनका अश्रुपात आदि। किंतु उनकी ये मानवोचित स्थितियाँ सीधे सीधे निराला के आत्म प्रक्षेपण की परिधि में नहीं आती, वह केवल उन्हें मनुष्य के रूप में स्थापित करने में सहायक होती हैं, जो कवि का प्रयोजन भी था। अंधेरे में कविता तो समग्रतः मुक्तिबोध का आत्म प्रक्षेपण ही है, किंतु उन्होंने पृष्ठ संख्या 46 काव्यात्मक छल, जिसका आश्रय प्रायः सभी कवि लेते हैं, का सहारा लेते हुए एक काव्य नायक की अवतारणा कर ली है, जो उनके और आम आदमी के बीच एक संप्रेषणात्मक माध्यम बनता है और कवि के लिए अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आत्म प्रक्षेपण या कवि के प्रत्यक्ष सामने आ जाने के संकेतक कुछ अनुसंग ये हैं। का समय की निश्चित सूचना, एक रात के दो हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो। दो अकस्मात, चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का। तीन कमरे में सुबह की धूप आ गई है। खा स्थान की निश्चित सूचना, एक यह सिविल लाइन्स है, मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। दो मैं अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ हूँ, काले काले सहतीर छत के, डॉट 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 आंगन में नल जोर मारता, जल खखारता। गा अभिव्यक्ति की खोज के संकल्प से संबंधित वक्तव्य, एक वह रहस्यमय व्यक्ति, अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह, निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह, आत्मा की प्रतिमा। दो किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्द अभिव्यक्ति अभाव का संकेत। तीन अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। चार अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है, गुरु है। पांच खोजता हूँ पठार, डॉट 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 पहाड़, डॉट 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 समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्म संभवा। पृष्ठ संख्या 47 घा आत्म स्वीकृतियाँ, एक यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको। दो मेरा सिर गरम है इसलिए भरम है। अंग परिचित संदर्भ, एक चेहरे वा मेरे जाने बूझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं भी पढ़ी थी। दो सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं। तात्पर्य यह है कि मुक्तिबोध की यह कविता काव्यनायक के छद्म के बावजूद कवि को बार बार सामने ले आती है। काव्यनायक का माध्यम आधुनिक युग की बहुत सी बड़ी लंबी कविताओं में अपनाया गया है, किंतु वहाँ आत्म प्रक्षेपण की प्रायिकता फ्रीक्वेंसी नहीं है, और यदि है तो इस सीमा तक नहीं। अंधेरे में कविता के बीच में एक जागृत बुद्धि प्रज्वलत धी कतई सिर फिरे पागल के आत्मोद्बोधमय गीत का गद्य अनुवाद देने की जो फंतासीय नाटकीय युक्ति अपनाई गई है वह भी कवि का आत्म प्रक्षेपण ही है। उसकी कोष्ठांतर्गत सूचना यह बता देती है, करुण रसाल व हृदय के स्वर हैं, गद्यानुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा है। यह अंश प्रभावशाली है और कवि यहाँ अपने को संबोधित करने की शैली के माध्यम से उन सभी लोगों पर निर्मम व्यंग्य करता है जिनको देश की चिंता नहीं रही है, चिंता रही है तो केवल अपना पेट भरने की। इसकी प्रातिनिधिक पंक्तियाँ ये हैं, उदर अंबारी बन अनात्म बन गए डॉट 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 डॉट, बहुत बहुत ज़्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम डॉट 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 डॉट, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। मुक्ति बोध की मानवीय संवेदना तथा देश निष्ठा यहाँ तीव्रतम हो उठती है। इसी प्रकार कुछ दूर तक चलने वाले भागवता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़, काव्यांश में मुक्तिबोध ही सामने है। काव्यनायक तो उनके पीछे खड़े होकर उनके नेपथ्य में जाने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। अंधेरे में समग्रता निर्विवाद रूप से आत्मप्रक कविता है और उससे कुल मिलाकर मुक्तिबोध के ही समूचे व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। किंतु मुक्तिबोध ने प्रस्तुति की जो फांतासीय शैली अपनाई है और अपने अवचेतन को अग्रिम सैन्य पंक्ति के रूप में आगे बढ़ा दिया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक काव्य वर्ण निर्मित करना चाहते थे। ऐसा न होता पृष्ठ संख्या 48 तो कविता में उनकी उपस्थिति की बारंबारता पर ध्यान नहीं जाता। रचनात्मक स्तर पर यह नई बात भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने आंसू में काव्य नायक को आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, किंतु वह तब खुल ही गए जब उन्होंने अपने अनुभव और अपनी रचनाशीलता को अपने व्यक्तित्व के द्विधा विभाजन से व्याख्यायित किया। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। वस्तुतः प्रत्येक कवि में दो व्यक्तित्व होते हैं, एक भोक्ता का दूसरा रचनाकार का। अनुभव भोक्ता पक्ष से प्राप्त होता है, रचना दूसरा पक्ष उस अनुभव के आधार पर करता है। नागार्जुन की एक कविता है, यह तो वह नहीं है। कविता एक विशिष्ट पहाड़ी प्रदेश के अनुभवों से जुड़ी हुई है जहाँ नागार्जुन अपनी गर्मियाँ बिताया करते हैं। नाशपाती के पेड़ को देखकर वह सोचते हैं कि यह तो वही पेड़ नहीं है जिसके नीचे मैं पिछले साल बैठा करता था। पिछले साल तो यह फलों से लदा हुआ था, इस समय इसमें फूल ही फूल हैं। एक बच्चे की मुस्कान उन्हें इस निश्चय तक पहुंचाती है कि यह वही पेड़ है। इस निश्चय तक जो पहुंचता है वह व्यक्ति नागार्जुन नहीं, काव्य सखा है। वह नागार्जुन का काव्य सखा है, उस शिशु की प्रसन्न आँखों का साक्ष्य। इस समय हमारे काव्य सखा को अनायास प्राप्त हो गया है। खुशियाँ छलकाने वाली अपनी प्रसन्न दृष्टियों से आ बतला रहा है, बाबा अब आप यहीं तो बैठोगे यहीं तो लेटोगे, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने से। यह काव्य सखा नागार्जुन का कवि मन है। बच्चे की बात पर बल्कि उसके साक्ष्य पर कोई पका हुआ बुजुर्ग इस सीमा तक शायद ही विश्वास करे। अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा इस प्रसंग में कवि के कौशल का अप्रतिम उदाहरण है। हम पूरी कविता पढ़ जाते हैं और वह अंतिम दो पंक्तियों से पूर्व तक एक चमत्कारपूर्ण अतीत कथा ही बनी रहती है। अंतिम पंक्तियाँ, प्रिय पाठक यों मेरी बीड़ा भी हुई मौन, पाठक को चौंका देती है क्योंकि उसके समक्ष अचानक यह सत्य उभर आता है कि केशव कम्बली को अज्ञेय ने अपने छद्म प्रतिरूप या माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था। मुक्तिबोध ने भी यही किया है। यह और बात है कि वह अवचेतन पर प्रच्छन्नता का माध्यम अपने के बावजूद धूप छाही वातावरण नहीं निर्मित कर सके और धूप में खुले में ही रहे हैं।